لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، اللهم أجل له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. سورة والنجم قرآن کریم کے ان چار سوروں میں سے ایک، جس کی ایک آیت پر سجدہ بھی واجب ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس سورے میں معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے. 1439 ہجرہ کے اس پہلے عشرے میں ہمارا ٹاپک معراج نہیں، لیکن بعض اہم چیزوں کو سمجھانے کے لیے معراج کا تذکرہ دو دن سے ہو رہا تھا، اور آج شاید اس سلسلے میں میری آخری گفتگو ہوگی. اور معراج کا ذکر تو اس سورے میں ذرا سا آگے چل کے آیا. خاص طور پر معراج کے حوالے سے دو ٹرمز ہمارے یہاں بہت کامن ہیں، ایک سدرۃ المنتہا اور ایک قابہ قوسین. عربی میں سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا آخری، بیر کا وہ آخری درخت جہاں پہ جبرائیل نے یہ کہہ کر پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا کہ ولو جاوستو انمولتن لہ ترختو، کہ یہاں سے اگر میں انمولا، یہ انگشت شہادت، اس انگلی کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. وہ ہے سدرۃ المنتہا، وہ آخری بیر کا درخت جس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں گے. جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہیں، وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالائن پہن کے چل رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی وہ عظمت جو معراج کے ذریعے ہمیں بتائی گئی، لیکن یہ ٹرم. اور دوسرا قابہ قوسین، اللہ اور رسول کے درمیان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم. بہرحال سدرۃ المنتہیٰ کو تو میں نے ذرا زیادہ سمجھا دیا، ضرورت نہیں تھی. اور قابہ قوسین کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کی مجلس میں ٹائم نہیں. یہ سب سورہ والنجم، سورہ نجم کی آیتیں، لیکن معراج کا بیان اس سورے میں شروع کرنے سے پہلے پروردگار نے اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی ایک خاصیت یہ بتائی ہے. والنجم اذا ہوا، دو ترجمے ہیں، ستارے کی قسم جب وہ جھکا، یا قرآن کی قسم جب وہ نازل ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ رسول گمراہ نہیں ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, वही कहता है जो वही कहती है। अल्लाह के रसूल, हर हर हदीस रसूल को कुरान ने अल्लाह का हुक्म करार दे दिया कि रसूल ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वही कहा जो अल्लाह कह रहा। अब पैगंबर की ये वो खासियत है जिसकी वजह से रसूल हमसे और आपसे और आम इंसानों से अलग होते। अच्छा, ये जुमला मुझे क्यों कहना पड़ा? वो इसलिए कहना पड़ा कि मेराज का वाकया जब आएगा, अगरचे आइंस्टाइन की थ्योरियां जिनको पता है, स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च जिनको पता, उनको तो अब वो कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, लेकिन स्टिल हमारी कौम में बहुत से लोग हैं कि जिनको ये सारी डिटेल नहीं मालूम। तो जरा सा इसको मैं बयान करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पैगंबर की जो सबसे अहम बात बताई गई कि वो वही से कहता, लेकिन इसके अलावा जो पैगंबर में हमें और आपको कुछ ऐसी खुसूसी चीजें नजर आ रही, वो मौजूदा नहीं। अच्छा, यहां पे एक लफ्ज मैं बता दूं कि पैगंबर ने जितने मौजूदे अपनी जिंदगी में दिखाए, सिर्फ एक मौजूदा ऐसा है जिसका नाम है मौजूदा खालिदा। खालिदा माने परमानेंट, हमेशा के लिए, फॉर एवर। सिर्फ एक मौजूदा पैगंबर का है जो मौजूदा खालिदा है, वो कुरान है। वो जो अभी अभी आयत सुनी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कुरान हमेशा का मौजूदा। बाकी जो अल्लाह के रसूल के मौजूदात हैं, वो ऐसे मौजूदात हैं कि अपने जमाने में वो मौजूदा लग रहे थे और थे भी, बाद वालों के लिए वो मौजूदे नहीं रहे। एक आम बच्चा भी वो काम कर सकता, और ये बाकी तमाम अंबिया का भी यही तरीका कार रहा। हजरत इब्राहिम आग में जाके बैठ गए, आज बिल्कुल ये पॉसिबल है कि एक आदमी जलती हुई आग में जाके बैठे और वो नहीं जले। जो उस वक्त इतना बड़ा मौजूदा हजरत इब्राहिम का करार पाया कि या नार कूनी बर्दम व सलामा। आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि फायर फाइटर जलती हुई आग के अंदर अपना ड्रेस पहन के चले जाते हैं और बचे रहते हैं, लेकिन अभी तो और भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया। इस साल से हज गर्मियों में आना शुरू हो चुका, और अराफात और मीना के मैदानों में गर्मी की वजह से आम आदमी भी बहुत परेशान है, और हर हज को ऑर्गेनाइज करने वाली हुकूमत भी बहुत ज्यादा परेशान है। 3 साल पहले मैंने सुना था कि जापान वाले एक ऐसा ड्रेस बना रहे हैं, एक ऐसी जैकेट बना रहे हैं कि उसे आप पहन लीजिए तो वो एयर कंडीशन का काम करेगी और गर्मी नहीं लगेगी। और अब इस साल हज पे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वैसे ही मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, ये मेंबर पे भी आपने महसूस किया होगा। तो एक साहब ने बताया कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, शायद दिसंबर में मार्केट में आ जाएगी वो घड़ी, वो वॉच कि जिसे आप पहनेंगे तो फिर वो आपके बदन को एयर कंडीशन बना देगी। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं, ना ही मुझे कोई कमीशन मिल रहा, लेकिन मैं बात यह अर्थ कर रहा हूं कि जैकेट तो फिर भी पहनना हमारा अपना जिस्म, हमारी अपनी बॉडी खाली एक घड़ी पहनकर वो एयर कंडीशन बन जाएगी, और सर्दियों में हीटर। कहा कि दिसंबर में मार्केट में है और प्राइस भी बहुत कम बताई कि $70 से भी कम। तो खैर, खुलासा ये इब्राहिम का मौजूदा, आग में जाके बैठे। आज एक बच्चा भी इस अंदाज से जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही, वो आग में जाके बैठ सकता। हजरत ईसा के मौजूदात, मुर्दे को जिंदा कर दिया, इसको अभी छोड़ दीजिए, हो सकता है कि ये भी हो जाए, लेकिन बाकी जितने मौजूदात हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड। हजरत मूसा का मौजूदा, दरिया के 2 हिस्से कर देना। अब ये सारे मौजूदात अंबिया के ऐसे कि उस जमाने के तमाम इंसान जो सही थे वो कबूल कर रहे थे, जो गलत थे उनकी भी समझ में जवाब नहीं आ रहा था, आज ये बच्चा भी कर सकता। और फिर अल्लाह के रसूल के मौजूदात, मिंबर पे बैठे اور ایک بار فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میرے سامنے موتا کا میدان ہے. جارڈن میں ہماری صرف ایک زیارت ہے اور وہ ہے حضرت جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی آن اور محمد وہ شہزادے جن کا تابوت کل آپ اٹھائیں گے ان کے دادا. اور اس کائنات میں دو ہی انسان ایسے جنہوں نے رسول خدا کا نکاح پڑھا ہے, ایک ابو طالب اور ایک ان کے بیٹے جعفر طیار. صرف جعفر طیار اور ابو طالب کو یہ اسپیشلٹی ہے, ایک اعزاز حاصل ہے, ایک آنر ہے کہ پیغمبر کا نکاح انہوں نے پڑھا, لیکن وہ جعفر طیار جارڈن اونلی ون زیارت. پیغمبر مدینہ کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, لوگ پیغمبر کے سامنے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے میدان موتا اور میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ میرا بھائی جعفر طیار دونوں ہاتھ اس کے قلم ہوئے, علم کو بچاتے ہوئے وہ خود مارا گیا, وہ شہید ہو پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے. اب یہ پیغمبر کی ایسی خصوصیت ہے جو آج ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ایک ڈیوائس آ سکتی ہے تو وہ یہاں بیٹھ کر, موتا تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے, ہو سکتا ہے چاند اور سورج کو بھی دیکھ سکے. پیغمبر اسلام کہ اور جو جسمانی خصوصیات ہیں, سایہ نہیں تھا, اس کا ریپیٹ ہونا بھی پوسیبل ہے بلکہ ہو بھی رہا. پیغمبر کی آنکھیں, پیغمبر سامنے بھی دیکھتے تھے, پیغمبر اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے. آج کل سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں, یہ ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے, ہماری باڈی میں امپلانٹ کیے جائیں گے, تو پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ ہم یہ کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے دیکھ رہے ہیں. تو پیغمبر کا دیکھنا, پیغمبر کا بولنا, پیغمبر کا سننا, حضرت سلیمان پرندوں سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں بالکل پاسیبل ہیں. تو اب یہ معصومین کی روایتوں میں بار بار اس طرح کے جملے آئے کہ بظاہر ہم کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے, لیکن وہ ایک معجزہ جب زمانہ ترقی کرے گا, ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی, وہ ایک بچہ بھی دکھا سکے گا. اور یہیں پہ رک کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ, بلکہ میرے حساب سے جو میں نے دنیا کا سروے کیا, سب سے بڑا فتنہ جو مومنین میں بن رہا آج کے زمانے میں, وہ بھی مولا کی ایک حدیث سے لنک کیا گیا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ایک چیز کا بہت زیادہ شوق ہے اور وہ ہے ظہور امام کب ہوگا, وین, ڈیٹ کیا. اور یہ خالی آج کل نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہمارے علماء نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی, لیکن عالم کی ریسرچ اور ایک ینگسٹر کی ریسرچ میں فرق ہوتا ہے. عالم وہ ساری باتیں بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ 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 حدیث آئی ہے, بٹ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہمارا زمانہ ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ پھر ریپیٹ ہو جائے. اور ہمارے یوتھ, انہیں انٹرنیٹ پہ, انہیں فیس بک پہ, ان پہ انہیں ٹیوٹر پر, انہیں کہیں سے بھی ایسی کوئی نیوز مل گئی جو ظہور امام کی نشانی یا سائن ہے, فوراً سرکولیٹ کر دیا کہ بس امام آنے والے ہیں. دو سال پہلے یا تین سال, دو سال, کنگ عبداللہ ڈیتھ ہوئی, انتقال ہوا, اب فوراً یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو امام کے ظہور کی ایک نشانی تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا خاندان ہوگا اور کئی بیٹے ایک کے بعد ایک حکمران بنیں گے. جب عبداللہ مرے تو سمجھو کہ وہ حکمران خاندان, وہ ڈائنیسٹی, وہ سلسلہ ختم ہونے والا. باقی چیزیں میں نہیں بتا رہا, آج ویک ڈے کی مجلس ہے, بہت لمبی بات نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑا فتنہ. روایت میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جو ظہور امام کی ڈیٹ مقرر کرے, فکذبو, ہو تم سب مل کر اس کو جھٹلانا اور کہنا تم جھوٹ بول رہے. خالی یہ نہیں کہا کہ اس کو جھوٹ سمجھنا, نہیں, اوپنلی اس کو کنڈیم بھی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے, کیونکہ یہ فتنہ. اور اسی کے ذریعے سے الحمدللہ شیعت رائے اکبر ہے, یہاں کبھی انحراف یا ڈائیورجن نہیں ہے, لیکن ہم میں سے جتنے غلط فرقے بنے ہیں وہ ظہور امام کے نام پر ہی بنے. कि ज़हूर इमाम की डेट फिक्स करके लोगों को गुमराह किया गया और मिसगाइड किया गया। लेकिन एक बात और कह दूं, वो आज तफसील नहीं आ रही, और इससे ये जो फितना है, फितना क्या फितना है? ज़हूर इमाम की डेट फिक्स करना। इस फितने से हमें रोक सकते हैं गाइड करने वाले उलमा और मराजी। तो वो लोग पहले मर्जियत पे अटैक करते हैं, असल में उनका मकसद कुछ और है, वहां तक जाना है, लेकिन पहले अटैक इन पे करेंगे ताकि जब कौम अपने मराजे पर ही ट्रस्ट खो दे और उनकी बात पे ट्रस्ट ना करे, तो फिर बहुत आसान होता है दूसरे लोगों को गुमराह करना। मर्जियत आज की मजलिस में हमारा टॉपिक नहीं है, जबकि आज की मजलिस में ये टॉपिक इसलिए बन सकता था कि आज हबीब इब्ने मुजाहिर का बयान है, जिनका टाइटल है रजुल फकीह, फकीह जो मर्जे का टाइटल है। लेकिन ये बहरहाल कल बात आ जाएगी, आज शॉर्ट करता हूं बात को, जो असल टॉपिक है वहां से हटने ना पाऊं। फितना, ज़हूर इमाम की तारीख। अब इससे पहले भी लोगों को इंटरेस्ट रहा इमाम कब आएंगे, और इससे पहले भी लोगों ने साइंस ऑफ अपीयरेंस या ज़हूर इमाम की निशानियों पे बहुत रिसर्च की। और फिर ये आपके इल्म में होगा कि लास्ट टू सेंचुरीज में इंडिया में, पाकिस्तान में और शायद ईस्ट अफ्रीका में भी एक टर्म बहुत इस्तेमाल होती थी 200 साल से, लास्ट टू सेंचुरीज से, कि आखिरी जमाना, आखिरी जमाना। यह आखिरी जमाना ज्यादा इसलिए कहा जाने लगा कि बहुत सारी हदीसों को लोगों ने जमा किया, तो ये एक इंप्रेशन बना कि 1200 साल के बाद इमाम किसी वक्त जाहिर होंगे, 1200 साल। और उसमें से सिर्फ एक छोटी सी बात, इसलिए कि उसी बात की वजह से मैं टॉपिक से हटाऊं, मौलाना जंगे सिफीन में जब आखिरी रात को वो आला जिहाद किया, लैलतुल हरीर, जंगे सिफीन की आखिरी रात, जंगे सिफीन वो जंग है जो 17 मंथ चली है, 17 मंथ, आखिरी रात जिसकी अगली सुबह को वो नैजों पे कुरान बुलंद किया गया और कुरान के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, वो वाली रात पूरी रात जंग होती रही सुबह को। अच्छा, फौज के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो काउंटिंग करे कि हमारे कितने आदमी आज मारे गए और दुश्मन के कितने। तो पता चला कि मौला की तलवार से 1000 उस रात को कत्ल हुए, और मौला का जो डिप्टी है, जो मौला का नायब है, मालिक अश्तर, कितने फजाइल मौला ने बताए, मैं एक हदीस भी नहीं पढ़ना चाहता हूं, वरना आज की मजलिस बिल्कुल अपने टॉपिक से हट जाए। लेकिन बहरहाल मौला ने यह कहा कि जो मेरा स्टेटस रसूलुल्लाह के पास था, वो मालिक अश्तर का स्टेटस मेरे पास है। वो मालिक अश्तर की तलवार से 999 मारेगा। अब मालिक अश्तर ने कहा कि मौला, आज तो इतना करीब आ गए हैं हम लोग कि सिर्फ एक का फर्क रह गया। मौला का जवाब है, आपने सुना, मैंने 999 और आपने 1000। मौला ने कहा, एक का फर्क नहीं है, तेरी तलवार के सामने जो दुश्मन आया मारा गया, मेरी तलवार के सामने जो आया तो मैंने पहले देखा कि इसकी 40 जनरेशन या पीढ़ियों में कोई मोमिन तो पैदा नहीं होगा, उसके बाद फिर उसको मारा। अब देखिए ये इमाम की आंख, इमाम वहां तक देख रहे हैं 40 पुश्तों तक। ये असल ये जुमला था, लेकिन फिर ये इमाम जमाना का मौजू थोड़ा सा क्यों आ गया। अब बाद लोगों ने 40 के अदद को बहुत सीरियस लिया, रिवायतों में 40 और 70, ये बहुत सारी हदीसों में ये लफ्ज आता। अब क्या 40 का मतलब 40 है और 70 का मतलब 70 है, या इसका मतलब है बहुत ज्यादा, वो एक अलग बहस। फला चीज में 70 हज का सवाब मिलेगा, तो वाकई मुराद 70 है या मतलब है कि बहुत सारे हजों का सवाब। खैर 40, उन्होंने कहा मौला ने 40 जनरेशन को देखा, इसका मतलब यह है कि 40 जनरेशन तक गलत लोग पैदा हो सकते हैं, उसके बाद फिर कोई गलत आदमी पैदा नहीं होगा। तो वो तो खाली इमाम जमाना का टाइम पीरियड है कि इसके बाद सारे लोग मोमिन और मुत्तकी और परहेजगार होंगे। का 40 जनरेशन कितने सालों में जाके पूरी होती, अब ये सोशियोलॉजी का मसाला। किसी ने कहा 30 में, किसी ने कहा 35 में एक जनरेशन चेंज हो जाती, तो 40 को 35 से मल्टीप्लाई किया या 30 से 1200 साल बने, 1300 साल बने, 1400 साल बने। चुनाच अल्लामा मजलिसी ने लिख दिया कि मेरे जमाने में बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं 1423 हिजरा में इमाम जमाना जाहिर होंगे। अब ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है इस जुमले की वजह से, और ऐसे और भी चीजें, लेकिन सारी की सारी गलत, ये सारी चीजें गलत। ज़हूर इमाम की तारीख किसी को नहीं पता, मौला ने जो 40 कहा तो 40 का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन असल बात क्या थी, इमाम वो चीज देख रहे हैं जो हम नहीं देख सकते। हमें तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन का नहीं पता कि वो मोमिन पैदा होने वाली है कि वो काफिर पैदा होने वाली है, कि दीदार पैदा होने वाली है कि बेदीन। अल्लाह का रसूल कहां तक देख रहा, मौलाए कायनात कहां तक देख रहे हैं। मगर बस अब मैं आगे अपने कल के सब्जेक्ट पर, मगर ये सारी चीजें मौजिजा नहीं। इंसान तरक्की करेगा, साइंस आगे बढ़ेगी, तो आप जैसे आज ज्योग्राफिया के हिसाब से तो अब आप देख सकते हैं, यहां बैठ के दारुसलाम देख सकते हैं। ये स्काइप भी काफी पुरानी चीज हो गई, अब तो दुनिया इससे भी आगे निकल गई। उसी तरह से आप फ्यूचर के हालात और वाकयात को भी देख सकेंगे क्या होने वाला। अल्लाह के रसूल ने मेराज में गुनाहगारों का अजाब कैसे देखा, अभी तो नमाज वाजिब नहीं हुई, तो नमाज कजा करने वालों का अजाब कैसे देख लिया। जब आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, तो वहां से ये कंसेप्ट आ गया कि जो चीज पहले फिक्शन थी, फ्यूचर को देखना, वो साइंटिफिक फैक्ट बन के रह गया। और फिर स्टीफन हॉकिंग की इस सिलसिले में मजीद रिसर्च, खुलासा ये कि फ्यूचर के हालात को देखना पॉसिबल हो सकता, बल्कि हो जाएगा। पैगंबर जो देख रहे हैं वो फ्यूचर के हालात। अच्छा, अब ये मेराज की हदीस नहीं, पैगंबर की कितनी हदीसें ऐसी जिसमें अल्लाह के रसूल ने दुनिया में बैठे बैठे कहा कि मैं फुला आदमी को जन्नत में देख रहा हूं, मैं फुला आदमी को जहन्नम में देख रहा हूं। जन्नत और जहन्नम का डिसीजन कयामत के बाद होगा, अभी नहीं, अभी नहीं। ये बात गुमराह मजहब वालों का नजरिया हो सकता कि अभी से जन्नत जहन्नम है। जो मैं हट रहा हूं मौजू से, वापस आता हूं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जन्नत और जहन्नम आफ्टर डे ऑफ जजमेंट, तो अभी से पैगंबर ने कैसे देख लिया। जैद बिन हारिसा की बेटी को जन्नत में देखा कि नहीं देखा, और भी बास गुनाकार रिवायतें पढ़ूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो मेराज के सफर पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता कि बाकी बातें सही, ये जो पैगंबर ने देखा कि बेनमाजी को क्या अजाब मिल रहा या उसके बाद कुछ और गुनाहगार, तो वो कैसे देख लिया। अच्छा, मेराज का सफर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट आसमान में रसूलुल्लाह एंटर हुए तब ये देखा, लेकिन जब मेराज का सफर कंप्लीट हो रहा था और पैगंबर वापस आ रहे थे, तो अपने रिटर्न में पैगंबर जन्नत में गए थे, और जन्नत के अंदर वो सारे नेक लोगों को देख के आए थे, और जहन्नम का भी विजिट किया था। जहन्नम में गए नहीं थे, नऊज़ु बिल्लाह, जहन्नम का विजिट किया था, और जहन्नम में भी कुछ लोगों को देख के आए थे। तभी तो जब रसूलुल्लाह ने आकर यह बताया कि मैं जन्नत और जहन्नम दोनों का विजिट करके आया हूं, तो लोगों ने दो सवाल किए, एक सवाल मर्दों ने किया, एक सवाल औरतों ने किया। मर्दों ने यह सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, जब आपने जहन्नम का विजिट किया, देखिए मेरी वर्डिंग को सुनिएगा, बाद में आपका एतराज ना हो, वाह ये कौन मौलाना आए हैं कि रसूलुल्लाह को जहन्नम में पहुंचा दिया, जहन्नम का जब विजिट किया और वो बताया, तो एक तो बहुत मशहूर हदीस है जो लेडीज में ज्यादा पढ़ी जाती है, उन्हीं को ज्यादा जरूरत, और ये हदीस पैगंबर ने शहजादी को बताई थी। पैगंबर कौन? सादिक। फातिमा कौन? सिद्दीका ताहिरा। सादिक ने सिद्दीका को मेराज की एक स्पेशल हदीस बताई। मेराज की बाकी हदीसें हमको और आपको बताई गई, एक स्पेशल हदीस कि मैंने सफर मेराज में जहन्नम में 10 औरतों को 10 गुनाहों की वजह से अजाब में देखा। आज जो मेरी मजलिस से पहले कुछ स्पीचेस हुई, मोहम्मदी मदरसे की एक बच्ची ने, किसी और यूथ ने, सारी लेडीज साइड से थी, तो आज का दिन तो लेडीज का दिन बन गया है, और इत्तेफाक से मेरी मजलिस का भी मौजू ये बना। तो पैगंबर ने यह बताया, लेकिन ये तो स्पेशल हदीस है जो सादिक रसूल ने सिद्दीका फातिमा को अलग से सुनाई। यह हदीस हमारे पास रसूलुल्लाह के जरिए नहीं आई, यह हदीस आई है थ्रू फातिमा। लेकिन वो बहरहाल न पढ़ने का वक्त है न जरूरत, मगर मदीने के मिंबर से पैगंबर बहुत जिक्र किया कि मैंने मेराज में जन्नत में क्या क्या देखा और मैंने मेराज में जहन्नम में क्या क्या देखा। तो किसी ने कहा बहुत ही शॉर्ट, या रसूल अल्लाह आप हमें सिर्फ एक बात बता दी, और वो ये है कि जहन्नम में जब आप गए तो जहन्नम में मेजॉरिटी किन की थी? पैगंबर ने फौरन कहा लेडीज की, औरतों की। जहन्नम में औरतों की मेजॉरिटी थी। खैर, मर्दों ने सुना, जैसे आप खुश हो गए वो भी खुश हो गए, हंसते हुए अपने अपने घर चले गए। लेकिन औरतों को पैगंबर पर एतराज नहीं हुआ है, वो विमेन लिबरेशन का दौर नहीं था, पैगंबर पर एतराज नहीं हुआ। लेकिन औरतें परेशान हो गई कि वाय हम क्यों, हमारी मेजोरिटी जहन्नम में क्यों? पैगंबर इस्लाम से अब औरतों ने सवाल किया। पहला सवाल मर्दों का था, वो मजमे में था। दूसरा सवाल औरतों का, या रसूल अल्लाह लेकिन वाय? पैगंबर ने कहा कि अगर मेरा कलमा पढ़ने वाली दो गलतियां ना करें तो शायद जहन्नम में कोई औरत नहीं जाए। जो मेरा कलमा पढ़ती है उनकी बात हो रही है, हम्मालतल हतब की बात नहीं हो रही है, हिंदा की बात नहीं हो रही, जो मेरा कलमा पढ़ के मोहब्बत करने वाली हैं वो कोई भी ना जाए, अगर ये दो गलतियां ना करें। नमाज में औरतें मर्दों से ज्यादा इबादत गुजार, दुआएं पढ़ने में औरतें ज्यादा आगे, आजादारी में औरतें ज्यादा पार्टिसिपेशन करती, नेकियों को देखते चले जाइए ज्यादा औरतों का रोल होता। कहा के दो, नंबर एक, अगर वो अपने शौहरों की नाफरमानी ना करे, और नंबर दो, अगर वो अपनी जबान को कंट्रोल कर ले। ये दो गलतियां ऐसी हैं खवातीन की। अब मुझे ज्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है मजलिस का, लेकिन आप में से बहुत सो का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पैगंबर तो खाली जहन्नम को विजिट करके आए तो बता रहे हैं, एक औरत की जबान, जबान पे अपने कंट्रोल कर ले तो क्या कहना इस औरत का। मगर देखिए, मैं तो खुद परेशान हूं कि बात से बात निकल आती, मगर मौला ने कहा कि औरतों खबरदार, ऐसा ना हो कि अपनी जबान को इतना सॉफ्ट बना लो कि नामहरम से भी इस तरह बात करो। लिमिट है हर चीज की, पोलाइटनेस की लिमिट है, सॉफ्टनेस की लिमिट है। कुरान करीम तो कह रहा कि खबरदार जब मर्दों से बात की जाए, पैगंबर की बीवियों से कह रहा, फला तखजान बिल कौल, खबरदार नरमी से बात ना करना। हमारे यहां शौहर को गाली दी जाती है, नामहरमों से बड़े ही अखलाक से मिला जाता है। यह आज का मौजू नहीं है, इसलिए इतना ही जुमला इनफ। मौला ने कहा कि एक लिमिट है, नामहरम के सामने इस तरह से तुम्हें बहुत ही पोलाइट और खुश अखलाक नहीं बनना, एक सवाल। और एक शौहर की नाफरमानी, शौहर की हर चीज में इताअत तो वाजिब नहीं, शौहरों ने भी गलत समझा है कि इस्लाम ने उनको फ्री हैंड दे दिया। हमारे यहाँ उर्दू और हिंदी जबान में एक टर्म है, शौहर तुम्हारा मजाजी खुदा है, कहां से बना मजाजी खुदा हुआ? और मर्दों ने वाकई अपने आप को असली खुदा समझ लिया है। लेकिन ये आज का, फिर आज का सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा जब रबाब का तस्किरा हो, ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा जब लैला का तस्किरा हो, ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा जब उम्मुल बनीन का तस्किरा हो। हमारे सामने वो जो इतनी अच्छी अच्छी मिसालें, आज नहीं, आज सिर्फ इतनी सी बात कि पैगंबर ने अपनी आंखों से फ्यूचर को देखा। और फिर एक अजीब बात पैगंबर ने बताई, जब पैगंबर मेराज के सफर में गुनाहगारों का तस्किरा कर रहे हैं, मैं ये सारी बात ये समझ के कर रहा हूं कि आपने सारी जिंदगी मेराज सुना, तो आपको पता कि मेराज में पैगंबर ने क्या क्या अजाब देखे। सिर्फ कल की मजलिस में एक अजाब पढ़ना पड़ा, वरना मैं बहुत अवॉइड करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन आपको पता, पैगंबर ने बेपर्दगी का अजाब देखा, पैगंबर ने گانا سننے والوں کا عذاب دیکھا، پیغمبر نے غیبت کرنے والوں کا عذاب دیکھا، پیغمبر نے انٹرسٹ یا بیاج لینے والوں کا عذاب دیکھا، پیغمبر نے مثلا فتنہ پھیلانے والوں کا عذاب دیکھا، وہ ساری روایتیں آپ سنتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے تقریباً جو میری ایج کے لوگ ہیں یا ابو 40، مگر اس میں پیغمبر نے نیک لوگوں کو بھی دیکھا، نیکیوں کو، اور خاص طور پہ جب پیغمبر نے 4-5 کا ریوارڈ بتایا کہ قیامت معراج بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ آسمان میں نے فلا کو دیکھا کہ اس کو اللہ نے یہ رتبہ دیا، یہ درجہ دیا، یہ ریوارڈ مل رہا ہے، یہ محل مل رہا ہے، ایسی حوریں مل رہی ہیں، اس طرح سے دودھ و شہد کی نہریں، جنت نہیں معراج. تو کسی نے ایک سوال کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، تو سفر معراج میں سب سے زیادہ ثواب آپ نے کس آدمی کا دیکھا؟ جنت میں نہیں، ابھی اس آسمان میں. پیغمبر نے کہا اس آدمی کا. دیکھیں یہ جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، پیغمبر نے کہا سب سے زیادہ ثواب میں نے اس آدمی کا دیکھا جس نے کبھی کسی نیکی کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑا کہ رہی تو بہت معمولی نیکی ہے، بہت چھوٹی سی نیکی ہے، یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی آپ محنت کرتے ہیں تو کب، جب پتہ چلے کہ آپ کو 100 pound per hour ملے یا 50 pound، اگر آپ کو کہا گیا فلاں کام کرو تم کو 2 penny ملے گی ایک گھنٹے کی، آپ کام نہیں کریں گے، چاہے آپ کو ضرورت بھی ہو، لیکن آپ کہیں گے اتنی ارننگ، فائدہ کیا محنت کرنے کا؟ نیکیوں میں کبھی یہ بات نہ کیجیے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، جیسے کل میں نے ذکر کیا بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی ایک نیکی. کسی مومن کی آپ پریشانی دور کر ہی نہیں سکتے، پوسیبل ہی نہیں ہے، خالی اس کی بات سن لینا تاکہ اس کا فرسٹریشن دور ہو جائے، یہ بھی ایک نیکی. اور اس طرح سے اب میں سلام میں پہل کر لینا مثلا، یہ بھی ایک نیکی. کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو، بلکہ معصوم کی وہ مشہور حدیث کہ 3 چیزوں میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا. نمبر 1، یہ یاد رکھو، اللہ نے اپنا عذاب گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا، یعنی غضب، ناراضگی، چلے عذاب نہیں، عذاب تو ہر گناہ میں ہے، ناراضگی. اب گناہ ہیں کتنے ہوں گے، 500,000، ان میں سے کسی ایک میں اللہ نے اپنی ساری ناراضگی، اللہ ناراض، وہ چھپا کے رکھی، یہ نہیں بتایا کون سے گناہ میں. تو کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اسی کے اندر اللہ نے اپنی ناراضگی چھپا کے رکھی. میرے والد بتایا کرتے تھے کہ انڈیا میں ایک زمانے میں ایک صابن آیا تھا سن لائٹ، بہت پہلے کی بات ہے، برٹش زمانے کی. اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کار کی ایک چابی، اس وقت کار بھی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، ایک صابن میں چھپا دی تھی کہ آپ صابن خریدیے اگر یہ اب آج کل تو یہ بہت بہت یہ انڈسٹری بہت ترقی کر گئی، صابن کی نہیں، کار کی نہیں، یہ ریوارڈ دینے کی. کل لاکھوں صابن لوگوں نے خرید لیے، شاید اسی میں وہ سن لائٹ کہ اسی میں کار کی چابی. اللہ نے اپنی ناراضگی کسی ایک گناہ میں رکھی، کسی ایک گناہ میں، اب پتا نہیں کون سا گناہ. تو کوئی بھی گناہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی ناراضگی. اور اللہ نے اپنی رضا، ایک اللہ نے اپنی رضا شب ہجرت مولا کو دی تھی، اور عام انسانوں کے لیے اپنی رضا کسی ایک نیکی میں چھپا کے رکھی. اب پتہ نہیں کون سی نیکی میں، کوئی بھی نیکی کا چانس ملے اس کو چھوڑنا نہیں کہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی کرو. ہو سکتا ہے جس کو تم نے چھوڑ دیا اسی میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی. اور تیسری بات میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا کچھ تعلق امام زمانہ سے بنتا ہے. تو اب شب معراج سب سے زیادہ میں نے اس مومن کو خوش دیکھا جس نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جہاں چانس بنا وہ نیکی کر ضرور لی، یہ سوچ کے نیکی کو اگنور نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی سی نیکی کا فائدہ کیا. میں نے کہا نا 100 pound کمانے والے کو 1 penny اگر مل رہی ہے تو یہ کام کرنے کا فائدہ کیا. یہاں پہ ہمارے سامنے 2 حدیثیں آتی. حدیث نمبر 1، قیامت کے میدان میں ایک ایسا اسٹیج آئے گا، ایک مومن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا तो एक ऐसा स्टेज आएगा उसकी नेकी और बदी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। स्केल पे रखेंगे तो नेकी और बदी, गुनाह और नेकियां, ये बिल्कुल इसका वेट बराबर हो जाएगा। स्केल बिल्कुल एक जगह जाके बराबर रुक जाएगा। पुराने जमाने के स्केल जो आज भी मैंने अफ्रीका में कुछ टाउन में देखे इस्तेमाल होते, खुदा उससे कहेगा खुद देख लो ये तुम्हारी नेकी है, ये तुम्हारे गुनाह, स्केल बराबर हो गए, अब तुझे जहन्नम भी नहीं मिल सकती, जन्नत भी नहीं मिल सकती। जरा छोटी सी एक जरा सी एक ग्राम की नेकी भी लेके आ जाओ कि स्केल जरा सा आगे बढ़ जाए और तू जन्नत। सकलत मवाजीन हो, स्केल को जरा सा झुकाना है क्योंकि बिल्कुल बराबर हो गया। अब उस वक्त उसे याद आएगा, ओहो कितनी नेकियों का चांस बन रहा था और मैंने छोड़ दिया, मैं नमाज जमात में खड़ा था, आगे की सब में एक आदमी की जगह थी, मैं आगे नहीं बढ़ा, काश मैं यही नेकी कर लेता, बहुत छोटी सी नेकी चाहिए। एक तो ये, दूसरा अब ये सुनिए, मौला के शहर में दफन होना नजफ, वादी सलाम, हर आदमी की तमन्ना होती है हमें वादी सलाम मिले। वादी सलाम की तफसील में जाने की मुझे आज जरूरत नहीं, हर आदमी जानता मौला का शहर वादी सलाम। लेकिन अगर कोई वादी सलाम का भी जो सेंट्रल पॉइंट है, खुद मौला की जरी, उसके अंदर उसे दफन होने का चांस मिले, क्या इसका स्टेटस और रुतबा होगा? अब हमदान ईरान का एक बहुत मशहूर शहर और बहुत पुराना वाकया नहीं है, तकरीबन शेख मुर्तुजा अंसारी जिनका तस्किरा एक दो दिन पहले हुआ, तमाम मराजे के उस्ताद, उनके फौरन बाद का जमाना, उनकी मर्जियत के बाद वाला जमाना। हमदान ईरान का एक शहर, वहां पे बहुत ही ज्यादा गुनाहगार इंसान था, जिसका गुनाह, वो गुनाह सवाब को मानता ही नहीं था, था मोमिन लेकिन गुनाह सवाब दीन ईमान कोई चीजों से उसका ताल्लुक ही नहीं। ये तारीख नजफ में वाकया लिखा, गुंडा और बदमाश था। अब मैं गुंडे के लफ्ज पर इसलिए रिलाई कर रहा हूं कि इस अफ्रीका में मैंने कई लोगों को यह लफ्ज कहते हुए सुना है, तो इसका मतलब यह कि आपको मालूम है कि गुंडा किसे कहते हैं, खैर वरना गुंडा समझाने में कई दस मिनट ना निकल जाते। गुंडा बदमाश, एक इंडिविजुअल जो गुनाह कर सकता है वो सारे करता है, शराब भी बेचता है और कैसीनो भी चलाता है जो भी उस जमाने के हों, और जुए में भी हिस्सा लेता है, और इबादत से तो दूर दूर उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये शख्स, और आमतौर पे ये गुंडे टाइप के लोग जो है ना, वो जरा से बहुत ही हैंडसम होते हैं, उनकी बॉडी भी बहुत फिट होती है, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटीज है उसके एतबार से उनको अपनी बॉडी को बना के रखना होता है। खैर बात में इधर उधर क्यों टाइम वेस्ट करूं, खूबसूरत भी था ये अपने एक दोस्त के साथ हमदान के एक चाय खाने में, कैफेटेरिया में, सड़क के ऊपर बैठा। इंग्लैंड में तो रवाज कम है, पेरिस में तो मैंने देखा कि ज्यादातर फुटपाथ के ऊपर ही लोग बैठ के चाय पीते हैं, यानी बाकायदा टेबल्स लगी होती है, वो बैठा। एक मरतबा इसके दोस्त ने देखा, 100 साल पहले के कल्चर में हर आदमी टोपी पहनता, इसने अपने सर से, बहुत खूबसूरत टोपी थी इसकी, सर से टोपी उतारी और उसको उसने मोड़ तोड़ के जेब में रखा, बाल अपने बिखरा लिए, चेहरा भी अपना जरा गंदा सा कर लिया, कपड़े भी फाड़ लिए। और दोस्त घबरा गया, कहा कि क्या कर रहे हो? अक्रॉस द रोड एक औरत जा रही थी, इसने उसकी जाने भी इशारा किया, देखिए बिल्कुल गुंडा बदमाशी नहीं है, जाहिल मुतलक भी है, दीन नहीं जानता, लेकिन इतनी समझ है इसमें, बस चीजें ऐसी हैं कि अगर आप दीन ना भी रखते हो तो कॉमन सेंस की बातें होती हैं। उसने कहा कि ये औरत, हाँ एक औरत है देख रहा हूं, बहुत सारी औरतें जा रही, कहा कि ये अपने शौहर से मुझे बहुत ज्यादा एहतियात के साथ बात कहना, ये अपने शौहर से खुश नहीं, सेटिस्फाई नहीं। अच्छा बहुत बुरा लग रहा है मुहर्रम की मजलिस में जुमला, लेकिन बात को समझाना, ये देखो कितनी खूबसूरत, हाउ प्रिटी, इसका शौहर जो है वो बहुत ही बदशक्ल है। अब पहले जमाने में पेरेंट्स जब शादियां करते थे, मैचिंग का इतना ख्याल नहीं करते थे जितना अपने और अपनी बहू की फैमिली के मैचिंग का ख्याल करते थे कि मेरी दोस्ती है उसके बाप से, भाई तुम उसके बाप से शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हें जिंदगी नहीं गुजारना, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू के साथ उनकी मैचिंग सोचो। खैर तो अब ये के बहुत खूबसूरत बच्ची शादी कर दी उसकी बहुत ही बशकल बच्चे लड़के के साथ, इस्लाम ने इसको भी एक अहमियत तो दी, कहा कि वैसे ही खुश नहीं, जानता हूं इसकी फैमिली को, शौहर बीवी के दरमियान डिस्प्यूट तो है भाई, जब सेटिस्फाई ही नहीं है तो हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाएगा, और अगर मोहब्बत है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो आज मेरा मौजू ये बनना ही नहीं था लेकिन पहले भी एक हदीस आ गई, अभी भी ये टॉपिक बन गया, अगर मोहब्बत है तो बड़ी से बड़ी गलतियां एक दूसरे की इग्नोर करेंगे, और अगर मोहब्बत नहीं है तो बहुत छोटी छोटी बातों पे रोजाना झगड़ा होगा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में खाने में नमक तेज हो गया तो इस पे तलाक मिल जाती है, रोटी ठंडी है तो इस पे तलाक मिल जाती है, वो मसला इसका नहीं है, वो मसला है कि वैसे ही दोनों के दिल में एक दूसरे से नफरत, जब नफरत होगी तो छोटी सी बात भी। खैर तो अब यह है कि ये अपने शौहर से खुश नहीं, अब अगर मैं इसके सामने इस तरह बैठा हूं और ये मुझ पर निगाह डालेगी तो और ज्यादा इसे अपना शौहर बुरा लगेगा, दिल में ख्याल होगा शैतान तो तरीके ढूंढता है किस तरह मोमिन के अंदर पेनिट्रेट करे कि भाई मैं तो इतनी प्रीटी और खूबसूरत हूं, मेरा शौहर होना ऐसा होना चाहिए, भाई ये ख्याल आ जाना ही ट्रैक से आदमी को हटा देता है। मैंने कहा मैं क्यों इनकी लाइफ को स्पॉइल करूं, तो मैंने भी अपने आप को इतना गंदा और इतना बदसूरत बनाने की कोशिश की ताकि इसके दिल में कोई बुरा ख्याल अगर आ भी सकता हो तो नहीं आए। ये बहुत बड़ी नेकी है इस्लाम में, और इस नेकी की वजह से औरतों से एक औरतों को एक बहुत बड़ा सवाब बताया गया। बाद औरतें हिजाब के हवाले से एक सवाल करती हैं तो वो ये भी है कि बहुत ज्यादा बन सवर के मेक, अब जैसे आका सिस्तानी ने कहा कि औरत के हिजाब में चेहरा वो खोल सकती है, कंडीशन लगाई है कि नहीं लगाई है कि जीनत नहीं होनी चाहिए, अगर जीनत है तो चेहरा छुपाना है, तो वो इसीलिए कि अगर जीनत के साथ है वो नामहरम देख रहे हैं तो ये औरत की नियत बिल्कुल ठीक है, देखने वालों में उनके घरों में खराबी ना हो, शौहर बीवी में डिस्प्यूट ना हो। आज तो हमारे यहाँ लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं कि पहले फजर की नमाज पढ़ो फिर जाकर किसी शौहर और बीवी के दरमियान डिस्प्यूट को आगे बढ़ाओ, ये दोनों जरूरी, नमाज जिस तरह तस्बीह ज़हरा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है उसी तरह से किसी मोमिन को फितने में डाले बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अब मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ, हो गया वाकई एक नेकी, ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा ना इबादत की ना तकवा है ना परहेजगारी है, माले हराम कमा रहा है मगर एक नेकी। साल गुजर गया, ये एक मरतबा शहर से बाहर किसी काम से गया, शाम को आया आफ्टर सनसेट, 150 साल पहले बाउंड्री वॉल होती थी शहर में जो रात को बंद हो जाती थी, अब जो आया तो वो शहर का दरवाजा बंद, बहुत पुरानी बात भी नहीं है बहुत रिसेंट बात भी नहीं, एक बार इसने दरवाजे को नॉक किया, आमतौर पे दरवाजे पे केयर टेकर बैठा रहता है कि अगर कोई लेट आए तो, आज कोई नहीं, आखिर इसे गुस्सा आ गया, गुंडा तो था ना, इतनी तेजी से दरवाजा नॉक किया बल्कि दरवाजा तोड़ने के करीब हो गए, तो फिर दरवाजा खुला एक आदमी बाहर निकला, वो बाहर कहीं जा रहा, इसने एक बार गुस्से के आलम में कहा कि क्या हुआ शहर वालों के सब मर गए, कहा तुम्हें नहीं पता आज आशूरे का दिन है, पूरा दिन कल की पूरी रात शबे आशूर वो जागे आप भी जागेंगे, पूरा दिन लोगों ने आजादारी की अब थक के मारे शाम गरीबा सो रहे हैं, इसलिए आज शहर में कोई नहीं, तो तुम कौन हो, कहा कि मैं बाहर से आने वाला एक जाकिर हूं, करीब के गांव से आया था मजलिस पढ़ने आया, शाम गरीबा खत्म हो गई लोग घरों में गए मैं अपने घर जा रहा हूँ, कहा अच्छा तुम जाकिर हो आज शाम गरीबा, जरा देखिए दीन से इतना दूर है कि इसको ये भी नहीं पता कि आज आशूरे का दिन है और आज की रात शाम गरीबा, कहा अच्छा आज शाम गरीबा आशूरा और तुम जाकिर हो, तो मुझे मसाइब सुनाओ, कहा कि मजमा होता है और मेंबर होता है और एक माहौल, कहा नहीं बस मुझे सुनना, अरे गुंडा, कहा मैं कहा बैठू, कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, ये कह के वो जरा सा झुका अपने ऊपर बिठा के कहा मसाइब सुना, उसने दो जुमले पढ़े जनाब अब्बास के मसाइब, जनाब अब्बास के मसाइब कौन है जिसकी आंखों में आंसू ना, ये भी रो दिया, और उसके बाद फिर मुज़ाकिर अपने काम से चला गया, ये शहर में आ गया, मगर ये दो मिनट के मसाइब ने इसको इतना चेंज किया कि पता नहीं क्या हुआ। अगली सुबह को खड़ा होता और एक मरतबा ये अनाउंसमेंट करता है कि जिस जिस को कभी मैंने माली एतबार से कोई नुकसान पहुंचाया आके वो पैसे ले ले, और उसके बाद कहा मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। सीधा वो नजफ पहुंचा। मैं वाकये को बहुत शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि वीकडे है और घड़ी की सुइयां बता रही कि अब मसाइब का वक्त शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट है। तो खैर सीधा नजफ आया और नजफ में आके फिर ऐसा मोमिन बना कि उस जमाने के मर्जे नमाज पढ़ाते थे। अभी आजकल सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके लिए मर्जे के पीछे नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इस मजमे में कितने लोग ऐसे जिन्होंने खुद आगा खुई के पीछे नमाज जमात पढ़ी, जिन्होंने आगा मोहसिन हकीम के पीछे नमाज जमात पढ़ी। तो यही हमारा तरीका। उस वक्त के जो मर्जे थे जो बाद में तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए, जिन्होंने तंबाकू हराम होने का फतवा दिया जब वो सामर्रा शिफ्ट हुए, लेकिन जबका ये वाकया है वो नजफ में थे, वो नमाज जमात पढ़ाते और ये नमाज जमात इतने शौक से आता है कि हमेशा पहली सब में उनके पीछे इसको जगह मिलती। अच्छा अब यहां नजफ में इसको कोई नहीं जानता, ये इसीलिए अपना शहर छोड़ के आया कि वहां मैं कितना ही अपने आप को चेंज कर लूं सबको पता मैं गुंडा और बदमाश या कोई नहीं जानता, ये नमाज पढ़ रहा। और एक दिन नमाज मगरिब शुरू होने वाली थी, मर्जे आए थे मुसल्ले पर बैठे थे कि एक नौजवान उनके पास आया मसल आलिम और आकर कहा कि बाबा बहुत बीमार है और आखिरी वक्त है, उन्होंने कहा है कि जरा मुझसे मिल लो, आखिरी मरतबा तुमसे बात करना चाहता हूं। हर दौर में ये याद रखिएगा जुमला, हर दौर में मराजे का तकरीबन एक प्लेयर रहा, एक शेख है तूसी का जमाना छोड़ दीजिए, वो तो एक अजीब यूनिक पर्सनालिटी, वरना हर दौर में दो मर्जी होते थे एक वक्त में, और कुछ इनकी तकलीद करते थे और कुछ उनकी तकलीद करते थे, लेकिन वो दोनों मराजों में बड़ा भाईचारा होता था, बड़ी मोहब्बत होती थी। ये आगा सिस्तानी और आगा खामेनाई ही की बात नहीं, आगा खुई और आगा खुमैनी भी एक ही दौर में नजफ में रहे, बल्कि जब इमाम खुमैनी के जवान बेटे को सद्दाम ने शहीद किया था तो अब लोग परेशान थे कि इमाम खुमैनी को यह खबर कैसे दे कि कल रात को आपका बेटा शहीद हो गया। आगा खुई से कॉन्टेक्ट किया गया, वो इमाम खुमैनी के घर गए और जाके ये खबर दी, और बहुत पुरानी बात नहीं, दोनों की मर्जियत अपने पीक पर थी, इससे पहले आगा हकीम और आगा बुरोजर्दी पेयर। तो ये जो मर्जी आगा शिराजी है इनके साथ के मर्जी बिल्कुल इनके लेवल के बीमार थे। उनके बेटे ने आकर कहा कि वो आखिर में आपसे मुलाकात करना चाहते, आपकी जियारत, कोई और काम नहीं। कहा देखो सारे लोग बैठ चुके हैं सफों में और अव्वले वक्त भी हो गया है नमाज का और कोई इंपॉर्टेंट काम उनको नहीं है, तो मैं नमाज पढ़ा लूं। मौला का रोजा है, नमाज मगरिबैन है, जमात के लिए लोग आ गए हैं। कहा कि बस ये नमाज पढ़ाऊंगा और फौरन आ जाऊंगा। अभी वो नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले जो उस वक्त के रोजे का केयर टेकर था जिसे खुद्दाम कहते हैं, उसे बुलाया और कहा कि इतना बड़ा मर्जी आखिरी सांस ले रहा, चुनाचे मौला की जरी से बिल्कुल मिली हुई जगह पे एक कब्र ताजा कब्र तैयार करो। अब तो सारा इलाका भर गया है, लेकिन जबकि बात है वहां कब्रों की स्पेस थी, हर आदमी को परमिशन नहीं मिलती थी, हर आलिम को परमिशन नहीं मिलती थी, हर मुज्तहिद को परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन जगह थी। जो आप भी देखते हैं, आप आ जाते हैं तो वहां मरहूमीन के नाम या जमीन पर या दीवार पे लिखे होते हैं। कहा कि बस फौरन यहाँ पे कब्र तैयार करो, इतना बड़ा मर्जी आखिरी वक्त में, मैं नमाज पढ़ा के उनसे मुलाकात करके आता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ा, ईशा की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ा के फारिग हुए कि वो वही नौजवान यानी उनका बेटा जो खुद भी एक आलिम, हर मर्जी की औलाद आलिम होती, वो भागा भागा आया। अब ये समझे कि मुझे ले जाने आया है, कहा तुम्हें जरूरत नहीं थी, मैंने कमिटमेंट किया था मैं खुद आता। कहा कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ, बाबा एकदम ठीक हो गए। अब मौत तो ऐसी चीज है ना कि कोई आदमी भी नहीं कह सकता, बल्कि मुझे अब तक याद है, ये मेरा पर्सनल वाकया, कराची में एक बहुत मशहूर इमामबाड़ा है महफिल मुर्तजा, मैं वहां मजलिस पढ़ रहा था तो मजलिस में ये ऐलान हुआ कि आज मगरबैन की नमाज के बाद फला मरहूम की नमाज जनाजा, और मैं मजलिस पढ़ रहा था जोहरैन के बाद, नमाज जनाजा है मोमिनीन शरीक। तो अब चूंकि उस रात को मेरी कोई मसरूफियत नहीं थी तो मैं भी मगरबैन की नमाज के बाद आ गया नमाज जनाजा, कोई कोई नमाज, कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कोई प्रिपरेशन नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में वो सिस्टम नहीं है जो आपके यहाँ, यहाँ तो बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट, वहां कोई नमाज का। तो मैंने पूछा कि भाई वो नमाज जनाजा का ऐलान हुआ था, तो एक साहब आगे बढ़े, कहा कि हाँ वो मेरे चाचा थे। तो क्या हुआ कि जल्दी नमाज जनाजा हो गए? कहा नहीं, वो ठीक हो गए। तो जब ठीक हो गए तो आपने सुबह दोपहर को ऐलान क्या किया था? कहा बहुत तबीयत खराब थी, बिल्कुल लग रहा था मरने के करीब है, तो हमने इन एडवांस में कह दिया लोगों से ताकि पहले से इत्तला मिल जाए। अब SMS का या फेसबुक का जमाना तो था नहीं, अब वो ठीक हो गए इसलिए जनाजा कैंसिल। ये तो मेरे सामने का वाकया, मेरे ऊपर गुजरा हुआ वाकया। खैर यहाँ इसमें नजफ के मर्जे के वाकये में ये बात नहीं थी, सिर्फ कहा था बाबा की तबीयत बहुत खराब है, आपसे मिलना चाहते। कहा कि ठीक हो गए चले। इन मर्जे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आगाए मिर्जा हसन शिराजी आगाए बुजुर्ग। कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही अब ये बात हो रही है मर्जे में और उस आलिम, एकदम से किसी के गिरने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो ये गुंडा, ये बदमाश जो पहली सब में नमाज पढ़ता है, एकदम गिरा और मर गए। अब जब इसको देखा कि मर गया तो वो आगा शिराजी ने कहा कब्र तो हमने खुदवा दी है, तैयार है कब्र, और ये अभी अभी मरा, इसको इसमें दफन कर दो। पता चला ऐसा गुंडा और बदमाश जो आशूरे के दिन भी अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी में लगा हुआ था, उसे ये भी नहीं पता कि आज शाम गरीबा, लेकिन मिला स्टेटस तो इतना हाई मिला कि हम और आप तो ये भी समझते वादी सलाम के किसी कॉर्नर में हमें जगह मिल जाए ये भी हमारे लिए इनफ है, और उसे मौला की जरी से इतना करीब कब्र मिली जहां बड़े बड़े मराजे भी समटाइम्स दफन नहीं हो पाते हैं। क्यों? एक ऐसी नेकी की वजह से जो बहुत छोटी सी हमको और आपको लग रही, लेकिन इस्लाम की निगाह में ये नेकी बहुत बड़ी नेकी। शौहर और बीवी के दरमियान कभी इख्तलाफ पैदा ना होने देना, और अगर हो तो उसे दूर करना। देखिए इस आदमी का कोई ताल्लुक भी नहीं था उस फैमिली से, लेकिन इतनी सी बात कि मुझे देखकर कहीं औरत के दिल में अपने शौहर के खिलाफ नफरत और ज्यादा ना बढ़े। जल्दी से एक हदीस पढ़ के, जिसका बयान थोड़ा सा कल आएगा, बात मुकम्मल करता हूं। पैगंबर का वो जुमला जहन में रख के ये वाकया सुनी कि बरज़ख में मैंने सबसे ज्यादा खुश उस मोमिन को पाया जो दुनिया में ऐसी नेकियां कर रहा जिसे आम लोग छोटी नेकी समझ रहे हैं, और अल्लाह के यहां वो बहुत बड़ी नेकी। नमाज शब कोई पढ़े तो आम आदमी भी कहेंगे कितना मुत्तकी आदमी। हर शब जुमा कोई दुआए कुमैल पार्टिसिपेट करे, ज़ियारत वारिसा पढ़े, आमाल रमजान करे, कितना मुकद्दस आदमी। लेकिन बीवी के दिल में जरा सा अपने शौहर के खिलाफ ख्याल ना आने पर ये कोई कोशिश करे तो उसको हम नेकी भी नहीं मानेंगे। पैगंबर ने शबे मेराज देखा और नजफ की तारीख में आगाए मिर्जा हसन शिराजी आगाए बुजुर्ग का ये वाकया आज भी मौजूद है, लिखा हुआ। लेकिन बाकी बातें बाद में, एक हदीस छोटी सी, का शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ बढ़ाने वाला, इख्तलाफ तो उनके दरमियान वैसे ही होगा उनकी वजह से, हमने सिर्फ उसको आगे बढ़ा, अल्लाह के यहां इतना गुनाहगार है जितना 70 अंबिया का कातिल हो सकता। और शौहर और बीवी के दरमियान आपस के इख्तलाफ दूर के पेचअप कराने वाले को इतना सवाब मिलेगा जितना इब्राहिम खलील खुदा की नबूवत का सवाब। बाकी बातें इसके बारे में कल कहूंगा, आज तो टाइम तकरीबन मसाइब से भी 2 मिनट आगे टाइम हो गया। नेकियां उसकी कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है कि बस ये वाली नेकियां इसको कर लो और जन्नत तुम्हारे लिए और तुम जहन्नम से प्रोटेक्टेड हो। आज भी कितनी ही ऐसी नेकियां जो हिडन नेकियां, आज भी कितने ही गुना ऐसे हैं जो हिडन गुना, और ये फिर पता कैसे चले? इसके लिए दीन का इल्म जरूरी है। शैतान हमें मर्जियत से दूर करता है, उसका एक रीजन ये भी कि जितना हम मर्जे से दूर होंगे गोया हम नॉलेज से दूर, और जितना नॉलेज से दूर है उतना ज्यादा शैतान को हमारे कंट्रोल का मौका मिलता। आका हुसैन ने करबला में और कोई जिहाद नहीं किया, यानी और भी किया, लेकिन असल मकसद ज़ियारत अरबईन का जुमला याद करें, लयस्तनक़ज़ा इबादका मिनल जिहाल। मौला हुसैन आपने ये जिहाद किया ताकि अल्लाह के बंदों को इग्नोरेंस से निकाला जाए। शैतान मर्जियत की दुश्मनी हमारे दिलों में डेवलप कर रहा है। ताकि हम मजीद जहालत में और इग्नोरेंस में डूबते चले जाए। और यहीं पे हमारे सामने हुसैन का वह लफ्ज आ जाता कि जब हबीब इब्ने मुजाहिर को खत लिख के बुलाया, खत लिख के बुलाया तो जरा उसकी वर्डिंग देखी, मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुल फकीह। हबीब कौन है? हबीब कौन है? देखिए, नंबर एक, हबीब हुसैन के बचपने के दोस्त हैं। नंबर दो, हबीब रसूलुल्लाह के सहाबी। नंबर तीन, हबीब मौलाए मुत्तकियान के ऐसे सहाबी के हर जंग में अली के परचम तले लड़े हुए। कितने हबीब के पास टाइटल है। हुसैन को लिखना चाहिए था, मैं सहाबी रसूल को बुला रहा हूं, ये नहीं लिखा। मैं अपने बाबा के दोस्त को बुला रहा हूं, ये नहीं लिखा। मैं अपने बचपने के दोस्त को बुला रहा हूं, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? इला रजुल फकीह। मैं आज बुला रहा हूं उसको जो दीन को समझता है, जिसके पास दीन की नॉलेज है, जो जाहिल नहीं, जो इग्नोरेंस के अंदर नहीं डूबा हुआ। ये कह के हबीब इब्ने मुजाहिर को बुलाया गया। हुसैन ने क्राइटेरिया बता दिया कि अगर कोई हुसैन को ज्वाइन करना चाहे तो सहाबी होने से ज्यादा, दोस्त होने से ज्यादा अहम क्वालिटी तुम्हारे अंदर यह होना चाहिए। और कौन हबीब? हबीब किसी मामूली आदमी का नाम नहीं। जहां से मजलिस शुरू हुई थी, एक जुमला उसी से रिलेटेड बता दूं। आमतौर पे मेरा तरीका आपने देखा होगा, जहां मजलिस शुरू होती है एंड में भी थोड़ी सी बात वही रिपीट होती है, रिपीट नहीं, वही बात आगे बढ़ती है, सिर्फ एक जुमला। नबी और इमाम फ्यूचर को देखता, लेकिन नबी और इमाम का स्टेटस तो बहुत हाई। हबीब इब्ने मुजाहिर, मीसम तम्मार, रुशैद हजरी, ये तीन दोस्त हैं, एक फ्रेंड सर्किल है जिन्होंने मौला से गैब का इल्म हासिल किया था। मीसम तम्मार का वाकया तो आप सुनते हैं, जबान काट दी गई, अगरचे जबान उनकी नहीं काटी गई, लेकिन जो मशहूर रुशैद हजरी, उनकी जबान काटी गई। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि फ्यूचर के हालात बता रहे। और उनमें तीसरे दोस्त का नाम था हबीब इब्न मुजाहिर, बहुत अजीम सहाबी। लेकिन मैं कहता हूं कि हबीब के बाकी फजाइल एक तरफ, सिर्फ इतना सा जुमला हबीब के स्टेटस को बयान करने के लिए काफी कि मैदान करबला में जब हुसैन की आर्मी पहुंच गई, हुसैन का लश्कर पहुंच गया, तो अब यजीद की फौज आना शुरू हुई। यजीद की सारी फौज एक साथ नहीं आई, यजीद की आर्मी आना शुरू हुई। और जब भी कोई फौज आती है तो फौज के आने की आवाज होती है, घोड़े आ रहे हैं, सिपाहियों की आवाज। हमेशा शहजादी जैनब कहती, अम्मा फिजा जरा देख के आना कौन आया। पता चला फिजा ने आकर कहा, शहजादी खूली आया, जरा देखना शायद कोई मेरे भाई का मददगार आया। फिजा ने वापिस आके कहा, शहजादी हरमुला आया। अब देख कर आओ, कहा शहजादी उमर साद आया। अब देख कर आओ, शायद कोई मेरे भाई का नासिर आया हो, कहा कि शहजादी शिमर आया। सारे वो नाम जो ज़ियारत आशूरा में आप लानत करते। एक मरतबा ज़ैनब ने, जब शिमर भी आ गया तो ज़ैनब ने एक बार कहा, फिजा क्या कि जरा मेरे भाई को बुला के लाना। हुसैन खेमे में आए, ज़ैनब क्या बात है, इस वक्त क्यों बुलाया? कहा, जब से करबला आई हूं मुसलसल तेरे खून के प्यासे तेरे दुश्मन वो करबला में आ रहे हैं, क्या इस पूरी कायनात में कोई नहीं है जो मोहम्मद के नवासे की मदद को आए? हुसैन ने कहा, ज़ैनब ये सवाल कोई और करता तो मैं उसको तफसील बताता, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम तो सारा जमाना देखे हुए हो, नाना दुनिया से गए, किसी ने हमारा साथ दिया, अम्मा के पहलू पे कूड़ा लगा, किसी ने हमारी मदद की, मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई कोई आया, मेरे बाबा शहीद किए गए कोई आया, मेरा भाई हसन मुश्तबा कलेजा टुकड़े किया गया इससे पहले कोई आया? ज़ैनब तुम तो खुद आई विटनेस हो, तुम्हें क्या बताऊं? ज़ैनब ने कहा, लेकिन भैया एक आदमी ऐसा कि मुझे यकीन है अगर तू उसे बुलाएगा तो वो हर परेशानी उठाएगा, लेकिन तेरे पास जरूर आएगा तेरे बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुजाहिर। आए हबीब, तुम सहाबी रसूल हो, बहुत बड़ा स्टेटस है। तुम मौलाए कायनात के सिपाही हो, बहुत बड़ा स्टेटस है। तुम हुसैन के बचपने के दोस्त हो, बहुत बड़ा स्टेटस है, मगर ये कितना बड़ा एजाज है कि कर्बला के मैदान में जैनब कुबरा ने अगर किसी को याद किया तो तुम्हें याद किया। और हुसैन ने कहा, जैनब अब मैं खत लिखता हूं, तुमने याद दिलाया, मैं खत लिखता हूं। दोपहर का वक्त है, हबीब शहर कूफा में अपने घर में बैठे, इब्ने ज़ियाद का कूफे पे कंट्रोल हो चुका, सारे रास्ते बंद हो चुके, और हबीब दोपहर का खाना अपनी बीवी के साथ खा रहे हैं, दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज। हबीब ने वहीं से पूछा, कौन? किसी ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिल हूं। हुसैन का नाम सुन रहा, एक मरतबा हबीब तड़प के उठे। हबीब की बीवी पर्दे के पीछे गई, हबीब दरवाजा खोलते और पहले तो उसके कदमों पे गिर पड़े, बोसा देने लगे। अरे यही तेरे पैर हैं जिनसे चलकर तू मेरे मौला की बारगाह से मेरे पास आया। उसके बाद बड़ी इज्जत और एहतराम से लाके कमरे में बिठाया और कहा कि आका का कासिद क्यों आया? कहा कि आका हुसैन ने खत भिजवाया। हबीब ने खत खोला, हुसैन का जुमला था, हबीब मैं तेरे शहर कूफा के करीब आ गया हूं, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां, मोहम्मद की नवासियां, मेरा अहले हरम भी है, अगर आ सकते हो तो मेरी मदद के लिए आओ। आज आप कहते हैं लेकिन पहली बार शायद हबीब ने कहा। जैसे ही यह जुमला पढ़ा, बेख्तियार अपनी जगह से घुटनों के बल खड़े हो गए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्दुल्ला, मौला तूने बुलाया है तेरा गुलाम हाजिर। लेकिन कासिद से कहा, तू चला जा, मैं बाद में किसी वक्त आऊंगा, मैं तेरे साथ बाहर नहीं जा सकता। उधर हबीब की बीवी को हबीब से ज्यादा बेचैनी थी, मेरे आका का कासिद मेरे घर के दरवाजे पे क्यों आया? इधर वो कासिद बाहर गया, उधर सौजा हबीब पर्दा हटा के कमरे में आई, कहा हबीब जरा जल्दी से बता मेरे आका ने खत में क्या लिखा। कहा मेरा आका करबला में आ गया और मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया। सौजा हबीब ने बेचैन होकर कहा, देखिए ये सौजा हबीब के दो जुमले थे जिसकी वजह से आज की मजलिस में मैंने औरतों का जरा सा रोल बताया। सौजा हबीब ने बेचैन होकर कहा, अरे हबीब मेरे आका ने बुलाया है तो तूने क्या फैसला किया? हबीब को इम्तिहान लेना, जमाना बड़ा नाजुक है, शौहर और बीवी को भी एक दूसरे पे उस वक्त ट्रस्ट नहीं था। हबीब ने कहा कि अरे मेरी बीवी, मैं सोच रहा हूं क्या करूं, पर इतना सुनना है वो मोमिना जलाल के आलम में आ गई। बाकायदा ये हिस्ट्री में लिखा है, मुहावरा नहीं, जलाल के आलम में आ गई, अपने हाथों से चूड़ियां उतार के फेंकी। कहा हबीब ये चूड़ियां पहन के घर में बैठ जा, अपनी तलवार मुझे दे, मोहम्मद का नवासा और मेरी शहजादी फातिमा का बेटा मेरे शौहर को बुलाए और मेरा शौहर कहे अभी मैं सोच रहा हूं, मैं तलवार लेके अपने आका की मदद को जाऊंगा। हबीब ने कहा मुझे अपना ख्याल नहीं है, मुझे तेरा ख्याल है, मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारोगे? अजीब जवाब दिया उस मोमिना ने, कहा कि आए हबीब मैं मिट्टी खा के गुजारा करूंगी, मिट्टी खा के, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती फातिमा का लाल मेरे शौहर को बुलाए और मेरा शौहर उसकी मदद को न जाए। हबीब ने कहा मैं तो तेरा ख्याल कर रहा था, मैं जा रहा हूं, रात का वक्त है, दिन की रोशनी में तो हबीब घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, रात का वक्त है, अपने गुलाम को घोड़ा दे के पहले से भेज दिया था कूफे के बाहर, फुला जगह मेरा इंतजार करना, अगर मैं घोड़े पे बैठ के निकला तो हुकूमत रोक लेगी। आधी रात के अंधेरे में पहुंचे, देखा कि गुलाम घोड़े की गर्दन में बाहें डालकर घोड़े से कह रहा है, बहुत देर हो गई, अब तक मेरा आका नहीं आया, शायद वो नहीं आएगा, मैं तेरे ऊपर सवार होके जाऊंगा और अपने आका की मदद करूंगा। हबीब की आंखों में आंसू आ गए, मौला मैं तेरी बेकसी के कुर्बान, आज ये गुलाम तक तेरी मदद करने का ख्याल कर रहे हैं। बहरहाल बात मुख्तसर करूं, बहुत लंबी हो गई बात, हबीब करबला के मैदान में पहुंचे, हबीब घोड़े पर सवार अपने गुलाम के साथ करबला के मैदान में पहुंचे, हबीब का आना था, खुशी के नारे बुलंद हुए, अब्बास ने अपना अलम हबीब के सर पे लहराया, असहाबे इमाम हबीब के गले लग रहे हैं, हर तरफ खुशी के नारे हैं, ये आवाजें ज़ैनब ने सुन ली। एक मर्तबा का फिजा, जब से करबला पहुंची हूं आज पहली बार भाई के फौज से खुशी की आवाज आ रही है, क्या हुआ देख के आना। फिजा गई और वापस आकर कहा, शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुजाहिर आ गया है, ये उसकी खुशी। एक बार जैनब कहती है, फिजा जरा हबीब को पैगाम देना, मैं हबीब से कोई बात करना चाहती हूँ। हबीब को पैगाम मिला, यकीन नहीं आ रहा है। एक बार हुसैन ने कहा, हबीब चलो मेरे साथ। बीच में पर्दा पड़ा है, खेमे के अंदर जैनब है, खेमे के बाहर हबीब है। एक मरतबा हुसैन ने कहा, जैनब मुबारक हो, मेरे बचपने का दोस्त मेरी मदद के लिए आ गया, मैं इतना सुनना है। जैनब कहती है, हबीब फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहती है, दुख्तरे फातिमा बिनते जहरा का सलाम कबूल करो। गश खा के हबीब जमीन पे गिर पड़े। शहजादी आज ये दिन आ गया है कि हम जैसे अदना गुलामों को बराह रास्त सलाम किया जा रहा। और फिर मसाइब हबीब का एक जुमला दो दिन पहले आ गया था, जब आशूर का दिन आया, हुसैन ने हबीब को भेजा के जाओ और जाकर नमाज की मोहलत लेकर आओ। फौज यजीद ने कहा, हबीब अपने आका से कह दो नमाज पढ़ने का फायदा कुछ नहीं, उसकी नमाज कबूल ही नहीं, वो नमाज क्यों पढ़ रहा है। बस इतना सुनना था, बर्दाश्त ना कर सका हबीब। वहीं से आवाज दी, आका मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मैं ये नमाज आपके नाना के पीछे कौसर के किनारे पढ़ूंगा। ये कह के तलवार निकाली और एक बार वो जिहाद किया। हबीब जमीन पे गिरे, बूढ़ा हबीब दुनिया से रुखसत हुआ। और 11 मुहर्रम की तारीख आ गई। 11 मुहर्रम की तारीख, यह है अहले बैत अथार, यह है अहले बैत का किरदार। 11 मुहर्रम की तारीख आ गई, सैदानियों का लुटा हुआ काफिला शहर कूफा में दाखिल हुआ। अल्लाह करे उससे पहले सब मर जाते। नामहरमों का मजमा, मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां बेमकनाऊ चादर के कैदी बना के बाजार कूफा में ले जाई गई, काफिले को रोक दिया गया। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया, आका सज्जाद के घुटने को पकड़ के हिलाया और कहा, आका मेरा सलाम लीजिए। सज्जाद ने देखा पलट के, ऊंट पर ज़ैनब बैठी है, कहा, फूफी अम्मा, यह हबीब इब्ने मुजाहिर का यतीम आया है और हमें सलाम कर रहा है। ज़ैनब ने झुक के देखा और कहा, अरे तू यहाँ आ गया, ये बता तेरी माँ कहाँ है। करीब की छत से ज़ौजा हबीब की आवाज आई, शहजादी आपकी कनीज आपके इस्तकबाल के लिए सुबह से यहाँ पे बैठी है। जैनब ने एक मरतबा कहा, ज़ौजा हबीब मैं तो कब से तुझे ढूंढ रही थी, अरे मुझे पुरसा देना है, तेरा शौहर मारा गया, अरे मुझसे पुरसा कबूल कर। शहजादी जैनब ज़ौजा हबीब को पुरसा दे रही है, आपको भी कोई पुरसा देने आया। भैया तो आपका मारा गया, अब्बास तो आपका मारा गया, अकबर तो आपका मारा गया, हाय आपको पुरसा देने को। अजरकुम अल्लाह, खुदावंदा हबीब इब्ने मुजाहिर की इस वफादारी का वास्ता हम में से हर एक को हुसैन, करबला और आले मोहम्मद का हबीब की तरह का वफादार बना। खुदावंदा उस करीम इब्ने करीम घराने का वास्ता, उस करीमा अहले बैत ज़ैनब कुबरा का वास्ता जिसके 18 लाशें जलती रहती पे पड़े हैं मगर वो हबीब की ज़ौजा को पुरसा दे रही है। खुदावंदा उस ज़ैनब कुबरा का वास्ता, जो लोग ज़ैनब को पुरसा देने आज की मजलिस में आए हैं उनको दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, दुनिया भर के मजलूम शिया ने हैदर करार की हिफाजत फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन